मन के पाप धुल गए हैं, मन के पाप धुल गए हैं, आत्मा चमक गई है। मन के पाप धुल गए हैं, आत्मा चमक गई है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है। मन के पाप धुल गए हैं, प्रीतम प्यारा पाया, स्वर्ग नजर आया। प्रीतम प्यारा पाया, स्वर्ग नजर आया। खुशी ऐसी है
ओम शांति। आप सभी बाबा के तपस्वी बच्चे तपोवन में तपस्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा भाग्य। कोटों में कोई और कोई में भी कोई को प्राप्त होता है। मधुबन की भट्टी जहां स्वयं जगत पिता ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की है, उस तपस्या भूमि में तपोवन में आप सभी भाग्यशाली आत्माओं को बहुत सुंदर गोल्डन चांस मिला है। प्रकृति का भी बहुत सुंदर सहयोग है। शीतल हवाओं में बाबा के प्यार की गोदी में एकांत शांत वायुमंडल के बीच में ऐसी सुंदर तपस्या करने को मिले, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। इसके लिए बहुत बड़े पुराने महारथी भी अभी इच्छा रखते हैं, चाहना रखते हैं कि हमें मधुबन की भट्टी का चांस मिले। भूमि का अपना महत्व होता है और ड्रामा अनुसार आप सबको ये गोल्डन चांस मिला है और हम देख रहे हैं आप सबके अंदर बहुत सुंदर लगन है तपस्या करने की। सवेरे भी सभी बहुत अच्छी बाबा के प्यार की लहरों में लहरा रहे थे और अभी भी हरेक के चेहरे पर वो लाइट और माइट की चमक अपने आप दिखाई दे रही है। आज हम सभी शांति दिवस के रूप में इस भट्टी को मनाएंगे। 3 दिन की भट्टी को 3 नाम दिए हैं। आज की भट्टी शांति दिवस के रूप में, जिसमें हम सभी इस सृष्टि मंच पर अवतरित हुई शांति दूत आत्माएं, चाहे तपस्या में बैठ करके या चलते फिरते भोजन करते, शांति के प्रकंपन चारों ओर फैलाएंगे। कल का दिवस मौन, संपूर्ण मौन और अशरीरी दिवस के रूप में मनाएंगे और परसों शक्ति संपन्न दिवस, समर्थ दिवस, उसके लिए क्या क्या समान है, जिस अभ्यास में हम सब रहें, कौन सा चिंतन करें। आप सभी जब क्लास में प्रवेश करते हैं या क्लास से बाहर जाते हैं तो इस दरवाजे पर बोर्ड में वो अभ्यास, वो समान सब लिखे हुए हैं। आज के दिन का आज लिखा है, कल से कल का लिखा जाएगा। अगर हम कोई लक्ष्य लेकर के बैठते हैं और अगर इतनी सब पवित्र आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं एक शुभ संकल्प के साथ तपस्या करें तो कितने श्रेष्ठ वाइब्रेशन, कितनी अच्छी शक्तियां चारों ओर वायुमंडल में फैल जाएंगी। इस वर्ष बाबा ने हम सबको ये विशेष काम दिया है, अपनी मनसा वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तित करने की सेवा करो। इस विषय पर भी आपकी क्लासेस चलेंगी, लेकिन आज अभी हम भट्टी का जो शुभारंभ कर रहे हैं, पहला क्लास है भट्टी का आपका, और आप सब ने जो विशेष 3 दिन के लिए व्रत लिया है मौन का, मुख का मौन, दुनिया के अंदर भी बहुत सी आत्माएं मौन रखती हैं, व्रत रखती हैं, कई कई महीनों वर्षों तक भी कई लोग मौन साधना करते हैं, बहुत सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। बाबा ने हम बच्चों को सहज योगी, कर्म योगी, राजयोगी बनाया है, इसलिए हम हठ क्रियाएं नहीं करते हैं, लेकिन ये अभ्यास हमारा एक नेचुरल बन जाए, मन का मौन और मुख का मौन, क्योंकि दो बहुत बड़ी शक्तियां हैं हम सभी ब्राह्मणों के पास। कौन सी दो शक्तियां हैं? एक संकल्प की शक्ति और दूसरी वाणी की शक्ति। आप सब ने बाबा के महावाक्य सुने होंगे, जब कभी बाबा अपने रथ की प्रशंसा करते हैं, प्रश्न उठता है कि गुलजार दादी का रथ बाप दादा ने क्यों लिया। बाबा उस रथ की विशेषता बताते हैं कि इस आत्मा ने अपने बोल पर बहुत कंट्रोल रखा है। आज तक भी हम सभी, आप लोग भी मिले होंगे, हम भी मिलते हैं, अनेक कार्य व्यवहार में दादी आती हैं, लेकिन कोई भी बोल उनके मुख से कभी एक्स्ट्रा निकल जाए, अधिक निकल जाए, हमने अभी तक नहीं सुना है। और बाबा ने उस आत्मा को जब साक्षात्कार का पाठ शुरू हुआ था उस समय ये वरदान दिया था कि आपकी दृष्टि बहुत अच्छी है, आपके बोल बहुत मधुर हैं और ये बहुत बड़ी सेवा करेंगे। इसी दो वरदान से दादी बाबा का रथ बन गई, अव्यक्त को उसने अपना रथ दिया और आज इतनी बड़ी सेवा, इतने बच्चों की पालना, इन दो शक्तियों के संग्रह से भगवान कर रहा है। अगर ये दो शक्तियां इस आत्मा के पास जमा नहीं होती तो सर्व समर्थ, सर्व शक्तिवान अपने बच्चों की पालना कैसे करता। हम बच्चों को भी कहता है, बच्चे ये तुम्हारे पास बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है, इसको व्यर्थ न जाने दो, इसको बचाओ जितनी बचा सकते हो। इसकी व्याख्या को कई बार हम लोग जब अंतर्मुखी या मन के मौन की बात कहते हैं, क्योंकि साधारण भाषा में मुख का मौन तो बहुत से लोग रख लेते हैं, चुप रहने की आदत पड़ जाती है। ये भी एक अच्छी आदत है, क्योंकि अधिक आवाज में आने से, अधिक बोलचाल में आने से कहीं न कहीं व्यर्थ आवाज टकराव का कारण बन जाती है, किसी के दिल को दुखाने का कारण बन जाती है। आवाज से बहुत सी आत्माएं प्रभावित होती हैं, इसलिए कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना, ये महामंत्र बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन मन का मौन, मुख का मौन होते हुए भी हमने देखा है मन के अंदर वार्तालाप चलती रहती है। मुख की ट्रैफिक को, मुख के आवाज को हम सब रोक लेते हैं, लेकिन मन की ट्रैफिक को रोक लिया जाए, बहुत ट्रैफिक है अंदर में। कई बार हम कहते हैं, क्या कभी हम अकेले होते हैं? होते हैं अकेले। अगर हम अपने संकल्पों की गति को देखते हैं, कभी योगी आत्माएं अपने संकल्पों पर दृष्टिपात करती हैं, नजर दौड़ाती हैं, तो भी महसूस करती हैं कि संकल्पों की गति बहुत फास्ट है, और उस फास्ट गति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना, संकल्पों को मारना और दबाना नहीं है। हम हमेशा एक बात याद रखते हैं, संकल्प जब हम कहते हैं तो सारा कल्प ही ये चलते हैं, इनको कोई हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, शून्य नहीं कर सकते हैं, जड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गति का नाम ही संकल्प है। अगर बंद हो जाए चलना तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आत्मा की प्रथम शक्ति है संकल्प, और उस संकल्प की शक्ति से हम सब बाबा से मिलन मनाते हैं। अगर कोई अपने संकल्पों को थोड़े समय के लिए शून्य कर ले, शांत कर ले, बिल्कुल डेड कर ले, तो क्या वो परमात्म सुख की अनुभूति कर सकता है, उस प्यार की अनुभूति कर सकता है? क्योंकि संकल्प की विधि से अनुभव किए जा रहे हैं। हम प्यार का अनुभव करते हैं, उस शक्तियों का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं, अनुभव में भी संकल्प है, फास्ट गति का नहीं है, अधैर्यता वाला नहीं है, व्यर्थ नहीं है, विशेष अधिक उत्पत्ति नहीं है उसके अंदर, लेकिन शून्य भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी डेड साइलेंस नहीं है, क्या है? स्वीट साइलेंस है, बहुत मीठी शांति, उसमें रस है, प्यार है, स्नेह है, शक्ति है, आत्मा के जो भी गुण हैं। जब हमें कभी ऐसी भट्टी का चांस मिलता है और करते हैं, ये लक्ष्य रखें कि सचमुच उन गुणों का हम गहराई में डूब करके अनुभव कर लें। अगर मैं आत्मा प्यार स्वरूप हूं, मेरा अंग अंग प्यार से भरपूर हो जाए, मेरे नैनों में भी वो रूहानी प्यार झलकने लगे, मेरे बोल से भी वो प्यार दिखाई दे, मेरी एक एक कर्मिंद्री प्यार स्वरूप बन जाए, आत्मा प्यार स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, अंदर ही अंदर आनंदित होती रहे, एक एक कर्मिंद्री से वो आनंद झलकने लगे, अंदर की कोई भी पीड़ा, अंदर का कोई भी दर्द समाप्त हो जाए, सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव कर ले। आत्मा के सातों गुण, चलते फिरते उठते बैठते गहराई से अनुभव करें और अपनी एक एक कर्म इंद्रिय से वो गुण दिखाई देने लगे। अगर बाबा कहता है मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, आप आत्माएं पवित्र स्वरूप हो, क्या मेरी दृष्टि इतनी पवित्र, बोल इतने पवित्र, हमारे हर अंग पवित्र शीतल सुखदायी बन गए हैं। जब हम उस स्वरूप की गहराई में चले जाते हैं, जब हम उस अनुभव में समा जाते हैं, हमारी कर्म इंद्रियां उसी प्रमाण कर्म करने लगती हैं, फौरन संकल्पों का प्रभाव कर्मों पर पड़ता है। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही स्लोगन के अंदर कि अगर न्यारे और प्यारे बन करके कर्म करो तो सेकेंड में संकल्पों को फुल स्टॉप लगा सकते हो। आज की मुरली का स्लोगन था। कर्म संकल्प को प्रभावित कर रहे हैं। अगर कोई कर्मों में अलिप्त हो जाता है, कर्मों में न्यारा प्यारापन नहीं है, कर्मों में कर्तापन का भान है, मैं करता हूं, मैंने किया, इस कर्म के बिना मैं नहीं रह सकता हूं, तो ये कर्म लिप्त कर देते हैं, अलिप्त नहीं करते। हम सबकी दौड़ है कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना। किसलिए हम तपस्या कर रहे हैं, किसलिए हमें ये योग के चांस मिल रहे हैं कि आत्मा अपनी संपन्न संपूर्ण कर्मातीत स्थिति में पहुंच जाए, जिस स्थिति में अवतरित हुई थी सृष्टि मंच पर। याद करो अपने 5000 वर्ष पहले के उस सतयुगी दुनिया में अवतरित होने के समय को स्मृति में लाओ। त्रिकालदर्शी बाबा ने बनाया है, दूरादेशी बनाया है, स्मृति में लाओ कि कितनी पावन, कितनी शुद्ध, कितनी निर्लिप्त आत्मा, निर्बंधन आत्मा, मुक्त आत्मा इस सृष्टि पर अवतरित हुई थी, कितने बंधनों में बंध गई, कितने हिसाब किताब बना लिए, मैं और मेरा के कितने बड़े जाल के अंदर खुद ही बुनी है जाल, किसी ने बुन करके नहीं दी। मकड़ी अपने मुख की रस से, मुख के रस से बहुत सुंदर जाल बुनती है। देखने वालों को भी अगर देखा जाए ये कारीगरी कहां से सीख करके आई, कितनी सुंदर जाल बुनती है अपनी ही लार से। परिणाम क्या होता है, या तो जाल को हप कर ले और नहीं तो उसमें फंस कर मर जाती है, परिणाम ये होता है। हम सब भी जब अवतरित हुए थे सृष्टि मंच पर बिल्कुल निर्लिप्त कर्मातीत स्थिति में, संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा, पावन आत्मा, किसी से कोई भी प्रकार का हिसाब किताब नहीं था, कोई भी बंधन नहीं था, प्रवेश कर गई शरीर में, शरीर के साथ रहते रहते। कई लोग ये बात पूछते हैं कि जब इतनी पवित्र आत्मा सृष्टि पर आई, पांचों तत्वों के पावन होने पर, पवित्रता की स्टेज के अनुसार उसने अवतरण लिया, योग बल से जन्म हुआ, फिर वो पतित विकारी कैसे बन गई, उसकी कलाएं कम क्यों हो गई, क्या किया उसने। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो स्टेज याद करें और धीरे 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 उसकी कलाएं छीण क्यों हो गई, कम क्यों हो गई, क्या कारण है। देहभान में आ गए। देहभान तो बाबा कहता सत्ययुग के अंदर होता ही नहीं है, क्योंकि देवताएं आत्म अभिमानी है, आत्मा का ज्ञान तो है ना, धीरे धीरे जन्म लेते। ठीक बोल रहे हैं, जमा खाता कम होता गया, ठीक है। संघ का प्रभाव पड़ता है, जिस संघ में हम आते हैं, आत्मा शरीर के संग में आई और शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाते बजाते पुनर्जन्म लेते लेते धीरे धीरे उसकी कलाएं, उसकी प्यूरिटी की डिग्री, कोई कलाएं माना एक दो कलाएं नहीं कम हो गई, कोई एक दो चीज कम हो गई निकल गई, ऐसा नहीं है। संपूर्णता में थोड़ी थोड़ी गिरावट आती गई, पार्ट बजाते बजाते संग में आते आते शरीर लेते लेते, जैसे आज की भारतीय संस्कृति में पला हुआ बच्चा जिसके घर में पूजा पाठ होता है, गीता पाठ होता है, शास्त्र पढ़े जाते हैं, बहुत प्यार से भक्ति के अंदर वो पलता है, देखता है माँ बाप को भक्ति करते हुए सीख लेता है, जैसे माँ बाप करते हैं वैसे करने लगता है। अगर उसी बच्चे को आप पढ़ाई के लिए विदेश भेज दें, जहां पर भक्ति का नाम निशान नहीं है, लोग भक्ति को अंधश्रद्धा समझ करके भक्ति नहीं करते, और उस वायुमंडल में वो बच्चा जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, थोड़े समय के बाद अगर वो एक दो जनरेशन वहां रह गया, टिक गया, धीरे धीरे अगर माँ बाप को बहुत स्नेह करता है, भारत भूमि से बहुत प्यार है, तो थोड़ा बहुत अगर खुद करता हुआ तो बच्चे उसका भूल जाएंगे, और अगर एक दो जनरेशन चल गई तो आज हम देखते हैं भारत के ही गए हुए लोग भक्ति को भूल चुके हैं, शास्त्रों को भूल चुके हैं, संघ का प्रभाव पड़ गया, उसी संघ में उसी वायुमंडल में उपलते पलते भारतीय सभ्यता को भूल चुके हैं। ऐसे ही आत्मा भी सृष्टि मंच पर, इस साकार सृष्टि पर आई और शरीर धारण करते करते वो चक्र के अंदर आते आते अपनी सतो प्रधान स्टेज से सतो रजो और तमो में आ गई। और अब बाबा चाहता है इस समय, कई मुरलियों में पिछली बार अभी सुना होगा एक हफ्ते पहले, कि मेरे बच्चों की स्थिति अभी तक तमो से रजो और रजो से सतो तक भी नहीं आई है। हम जो योग अभ्यास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हमारा एक लक्ष्य है, उद्देश्य है कि हम अपनी इस डिग्री को बढ़ाएं, जो अंदर से तमो प्रधानता है, जो जिस प्रकार की अंदर खाद है, जो भी बंधन है, जो भी संस्कार हैं, वो इस अग्नि के अंदर समाप्त हो जाए, ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो, ऐसी तपस्या की जाए जो इनका नाम निशान भी समाप्त हो जाए। जैसे सोने को प्योर बनाने के लिए तेज अग्नि में डालते हैं, जब तक तेज आग नहीं है तब तक उसकी खाद निकलती नहीं है, जब तक सोना आग में समाता नहीं है, समान नहीं बनता, तब तक पवित्र नहीं बनता, स्वच्छ नहीं बनता, अपनी ओरिजिनल स्टेज को प्राप्त नहीं करता। आत्मा में भी जो अशुद्धियां आई हैं, जो व्यर्थ और नेगेटिव आ गया है, जो भिन्न भिन्न आदतें आ गई हैं, जो संस्कार आ गए हैं, संग दोष में आने से, संग में आने से, बॉडी कॉन्शियस में आने से, जो हमने अनेक बंधन बना लिए हैं और उन बंधनों में बंध गए हैं, जब तक गहरी रियलाइजेशन नहीं है, अंदर की दिल की महसूसता नहीं है और शक्तिशाली याद नहीं है, तब तक परिवर्तन नहीं होता है। कई कहते हैं इतने समय से योग कर रहे हैं फिर भी ये संस्कार इनका नहीं गया, योग कर रहे हैं लेकिन शक्तिशाली योग, प्रज्वलित, जो बाबा कहते हैं अग्नि प्रज्वलित हो, ज्वाला स्वरूप की याद हो, जिसमें आत्मा कंचन बन जाए, पावन बन जाए, शुद्ध बन जाए, ये बहुत सुंदर चांस है आपको। इसलिए मैं आपके भाग्य की महिमा कर रहा हूं। बैठ जाओ तपस्या में, अपने हीरे को देखो इस शरीर से बाहर निकाल कर। बाहर निकाल देना माना अलग नहीं हो जाना, लेकिन एक अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग अंतर्मुक्ता की गुफा में हूं। गुफा है, सन्यासी लोग गुफा में बैठ जाते हैं, बाहर के वायुमंडल से बच जाते हैं, बाहर की बातों से बच जाते हैं। गुफा है, जंगलों में जाओ, पहाड़ों पर जाओ, अनेक गुफाएं आपको मिलेंगी। तपस्वियों ने आज तक वो गुफाएं खाली पड़ी हैं, कोई नहीं है, लेकिन जब वो तपस्या करते थे पहले जमाने में, थोड़े समय पहले ही हम लोग जाते हैं पहाड़ों पर, बहुत बहुत दूर, बहुत अच्छी अच्छी गुफाएं हैं माउंट पर, और ऐसी गुफाएं हैं जहां किसी का भी प्रभाव नहीं आ सकता, हवा भी नहीं आ सकती। उसमें तपस्वी सन्यासी रह करके तपस्या करते थे, अभी कोई कोई रहते हैं और फिर चले आते हैं शहर में। उनकी तपस्या के वायुमंडल से, प्रभाव से, शहर वाली आत्माएं उनके भोजन पहुंचाने के लिए पहुंच जाती थी, उनसे शांति लेने के लिए, उनके शब्द सुनने के लिए उनके पास पहुंच जाती थी। कभी उन्होंने मांगा नहीं शहर में आकर के। कुछ साल पहले मैं एक गुफा में गया था, एक सन्यासी वहां रहता था। हमने कहा, महात्मा जी आपको भोजन कहां से आता है? बोला, भोजन की मुझे क्या जरूरत है, बहुत नशे से बोला। मैंने कहा, नहीं फिर भी शरीर है। बोला, भक्त लोग अपने आप पहुंचा जाते हैं। आज तक भी ऐसी तपस्वी आत्माएं हैं जो भक्तों को खुद आकर्षण होती है, पहुंच जाते हैं उनके पास। हम सबको बाबा कहता है, कछुए की तरह बच्चे सब अंगों को समेट लो, अपने सब विचारधाराओं को समेट लो जो बाह्य मुक्ता में चले गए। बहुत कार्य में आप सब व्यस्त रहते हैं, मुझे अनुभव है, पता है कि आप सबके पास बहुत सारी जवाबदारियां हैं, लौकिक की, बिजनेस की, अनेक प्रकार की फैक्ट्री आप चलाते हैं, दुकान है, बहुत समय बाह्य मुक्ता में रहना पड़ता ही है, शरीर निर्वाह के लिए कुछ करना ही पड़ता है, और बाबा ने छुट्टी दी है बच्चे भले को, उसकी मना नहीं है। लेकिन अभ्यास ये हो, जब समय मिले सब अंग समेट लो, सब विचारों को समेट कर एक में लगा दो। इसका नाम है एकांत। एकांत में चले नहीं जाओ, उस गुफा में बैठने की जरूरत नहीं, लेकिन इस गुफा में बैठ जाओ कि मैं आत्मा कितनी शांत हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं। बाहर के वायुमंडल से बच जाएंगे, विघ्नों से बच जाएंगे, समय बच जाएगा, संकल्प बच जाएंगे। ये अंतर्मुखी आत्मा को बहुत फायदे होते हैं। बाह्य मुक्ता में आने से बहुत समय नष्ट जाता है, शक्तियां नष्ट जाती हैं, संकल्प भी व्यर्थ चल जाते हैं। अगर कोई ब्राह्मणों की कंप्लेन रहती है तो यही रहती है कि योग में बहुत व्यर्थ आता है, अभी तक व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, मजा नहीं आता, कंट्रोल नहीं कर पाते, केवल अभ्यास की कमी है। जब अर्जुन बार बार भगवान को कहता है कि हे भगवान, मेरा मन एकाग्र नहीं होता है, क्या शिक्षा भगवान दे रहे हैं गीता में, क्या कहते हैं? हे अर्जुन, सहज नहीं है, लेकिन दो विधियां हैं जो तू इस मन को एकाग्र कर सकता है, और वो दो विधियां हैं अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य ही विधि है अपने व्यर्थ को कंट्रोल करने की। अगर व्यर्थ को आप समाप्त करना चाहते हैं, घबराएं नहीं, डरे नहीं, ये तो लगता ही नहीं योग, बहुत मेहनत है इसमें, नाम तो सहज है लेकिन बैठते हैं तो बहुत संकल्प चलते हैं, इधर की उधर की बातें याद आती हैं। कारण तो है, हम जानते हैं कारण को, हम वायुमुखी हैं, इसलिए इन कर्म इंद्रियों ने कुछ गलत कार्य किए हैं जिनकी स्मृति आ जाती है, बीतती हुई बातों की स्मृति आ जाती है, कर्मों की आ जाती है। इस जन्म में कुछ नहीं किया तो पास्ट में किया है, उसके संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, उसे संकल्प और स्वप्न प्रभावित होते हैं, योग में विघ्न डालते हैं, तप्त करके ही छोड़ना है, बार बार अभ्यास करो। कम से कम ये अभ्यास करो कि मैं एक आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, मैं इस देह से अलग हूँ, मैं पवित्र शुद्ध शांत शक्ति संपन्न हूँ। स्मृति में तो लाओ, चिंतन धारा को तो इस ओर मोड़ दो। अगर व्यर्थ में ही युद्ध चलती रही, व्यर्थ चिंतन ही चलता रहा तो योग का रस कैसे आएगा? योग में रस तब आएगा जब हम पहले अपनी चिंतन धारा को मोड़ दें, ज्ञान चिंतन से, अच्छे विचारों से, शुद्ध संकल्पों से, नशे के संकल्पों से, बहुत ऊंचे सम्मान में स्थित होकर। इसी स्मृति को दोहराओ, मैं किससे मिलने जा रहा हूं, मेरा कौन है, किसने मुझे मिलने का समय दिया है, विचार तो करो। जो सर्वसमर्थ है, जो सारी दुनिया का रक्षक है, जो सारी दुनिया का गाइड है, जिसे सारी दुनिया पुकार रही है, ढूंढ रही है, हम सब पहचान से और संबंध से, पहचान भी यथार्थ है, सिर्फ बहकावे में किसी के कहने से हम नहीं याद कर रहे हैं उसको, हमारे दिल में उसकी जिगरी पहचान है, वो है कौन, कहाँ रहता है, क्या संबंध है, क्या प्राप्ति है मुझे, मैं उसका वारिस हूँ, अधिकारी हूँ, मालिक हूँ, जो उसका है वो मेरा है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने जिनका वो भंडार है, उसका मैं बच्चा हूं। कमी हो सकती है? अगर होती है, माना हम अपने आप को उस निश्चय में, उस नशे में, उस समान में स्थित नहीं कर रहे हैं, कर लो समान में स्थित, और उस समान में बैठ करके अपने आप को इतने ऊंचे समान में स्थित करके बाबा से मिलन मनाओ, एक सेकंड में बाबा आपके सामने हाजिर हो जाएगा। योग में मेहनत नहीं है, बहुत सहज है, बहुत सहज है, लेकिन चिंतन को मोड़ देने की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है, स्मृति को बार बार दोहराने की जरूरत है। डल स्मृति से योग नहीं करो, बैठ गए मैं तो शांत स्वरूप हूं, ये स्मृति मिलाए और चिंतन समाप्त कर दिया, शून्य की तरफ जाने लगे, क्या होगा बताओ, क्या होगा? नींद आएगी? नहीं आएगी। नींद उन्हें ही आती है जिनके संकल्प शून्यता की ओर चले जाते हैं, बार बार वो लहरें आती रहती। अगर वो खुशी के संकल्प में, प्यार के संकल्प में, उस स्नेह के संकल्प में आत्मा समा जाए, किसी का किसी से प्यार होता है, उसकी स्मृति आते ही खो जाता है उसमें, जिगरी स्नेह हो, बहुत समय से न मिला हुआ हो, कोई उसका पत्र व्यवहार न हुआ हो, बात न हुई हो, प्यार हमारा बहुत गहरा हो, क्या होगा? उसकी सूरत मूरत बार बार सामने आएगी। हमको तो रोज कहता है, बच्चे, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा शिक्षक, मैं तुम्हारा सतगुरु हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, साथ ले जाऊंगा, अपने समान बना करके ले जाऊंगा। कितना प्यार है उसका, याद करो उसे, स्मृति में लाओ। किसने मुझे ऐसा जीवन दिया है, कभी कभी स्मृति में लाते ही आत्मा इतनी गदगद होती है। क्या अनुभव आपको बताऊं, कल एक भाई मिला मेरे को, ये हार्ट वालों का जो क्लास चल रहा है नीचे, मैं क्लास कराने गया था, मेरा क्लास रखा था चिंता मुक्त कैसे बने। क्लास कराने के बाद जब मैं आया तो एक भाई आकर के मुझे कहता है कि बहुत बड़ा वंडर मुझे एक दिखाई देता है, यही एक स्थान है, यही एक जगह है जहां पर इतने यंग लोग इतनी अच्छी जीवन जी रहे हैं, कितने विचार इनके शुद्ध हैं, पवित्र हैं, और कितनी निश्चिंत जीवन है। वो देख देख करके बार बार बोले मेरे को कि ऐसा कहीं संसार में नहीं है, कहीं नहीं है। आप जाकर के किसी भी संस्था में, किसी भी स्थान पर, किसी दुनिया के कोने में चले जाएं, कितनी यंग एज में कुमार कुमारियां एक निर्मल जीवन, पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन और सकारात्मक चिंतन से भरपूर जीवन, उमंग उत्साह से भरपूर, निराश नहीं, हताश नहीं, बीमार नहीं, कितनी महान जीवन बाबा ने बनाई है। अगर हम अपने जीवन पर एक नजर दौड़ा लेते हैं, आत्मा गदगद हो जाती है। कितना बड़ा भाग्य है जो भगवान ने हम बच्चों को दिया है। प्रवृत्ति है, ग्रस्त है, आप सबके साथ है सब कुछ, लेकिन चिंताओं की टोकरी तो साथ में नहीं है, है किसी के पास है? बच्चे बन गए और बच गए, अगर बच्चे नहीं हो तो नहीं बचोगे। बच्चे बन गए, कुछ नहीं है अपना, हम न बड़े हैं, न हम महान हैं, न हम जुम्मेवार हैं, सब कुछ बाबा का है, सब दे दिया बाबा को, समर्पित कर दिया, स्वाहा कर दिया। आप कहता है बच्चे तू ट्रस्टी हो जा, संभाल ट्रस्टी होकर, मेरी अमानत में ख्यानत नहीं करना, मैंने तुझे अमानत दी है, ये शरीर भी तुम्हारा अमानत है, ये मन भी तुम्हारा अमानत है, ये धन भी तुम्हारी अमानत है। किसकी अमानत? भगवान की अमानत, हम संभाल रहे हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं कर सकते, न व्यर्थ सोच सकते हैं, न व्यर्थ कर सकते हैं, न व्यर्थ बोल सकते हैं। ये है अपने संकल्प को बचाना, समर्पित जब तक नहीं हुए हैं, मन से, तन से समर्पित होना तो बहुत बड़ी बात है, कोई अपने घर गृहस्थ को छोड़ दे वो तो छुड़ाता नहीं है बाबा। पहले एक का समय था, भट्टी बननी थी, भाई बहनों ने त्याग किया, सरेंडर हुए, घर बार छोड़ दिया, बदनाम तो इसी में हुए। अब बाबा कहता नहीं, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ संभालो, अपने अपने घर में रहो, अपनी अपनी प्रवृत्ति को संभालो, लेकिन ट्रस्टी होकर के, न्यारे होकर के, कर्म के बोझ बाबा को दे दो, अपनी जवाबदारियां दे दो, आपके संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे। और श्रेष्ठ संकल्पों का चिंतन ही मन का मौन है। मन का मौन ये नहीं है कि मन के संकल्पों को शून्य बना दें, लेकिन श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन, परमात्म चिंतन, अपने भाग्य का चिंतन, जिसमें बहुत विस्तार नहीं है, उस चिंतन को तो हम चेक कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। जिसका अपने संकल्प पर कंट्रोल है, अपने मन पर अपना कंट्रोल है, उसके पास सर्व शक्तियां अपने आप जमा होती जाती है। जब बाबा कहता है बच्चे अभी समय आ गया है, वाणी की सेवा भी समाप्त हो जाएगी, ऐसी परिस्थितियां घटेंगी जो आप वाणी द्वारा संदेश नहीं दे सकोगे, लेकिन सकास देने की जरूरत, मनसा द्वारा शक्ति देने पड़ेगी, हम सभी भी अपने पास वो शक्तियां अंदर की जमा कर लें, आंतरिक शक्तियां, जो शक्तियां प्रयोग कर सकें। यदि आपके जीवन में कोई भी रुकावट हो, किसी भी प्रकार का विघ्न हो, चाहे परिवार की तरफ से आ रहा हो, समाज की तरफ से आ रहा हो, बिजनेस की तरफ, सरकार की तरफ से आ रहा हो, इस शरीर की तरफ से आ रहा हो, सर्व विघ्नों और रुकावटों को समाप्त करने के का साधन, उसका एक बहुत सुंदर यंत्र आप सबके पास है, और वो यंत्र है श्रेष्ठ शुभ संकल्प। उस संकल्प में इतनी शक्ति है जिस शक्ति से आप उसको समाप्त कर सकते हैं। परमात्मा की शक्ति श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का विघ्न आ रहा हो, चाहे आपके परिवार में आपके बच्चे नहीं कहना मानते हैं, कल एक बात यही निकल रही थी जब हमने चिंता मुक्त की बात बताई, कई माताएं मेरे पीछे पीछे आ गई। मैं क्या हुआ, बोली भाई साहब आपने जो कहा है वो है बहुत सही, लेकिन चिड़चिड़ापन मुझे इसलिए आता है, मैं बच्चों को सुधारना चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं 10 बजे सो जाती हूँ, वो भी सो जाएं, वो भी मेरे तरह 4 बजे 5 बजे उठ जाएं, जैसा मैं कहूँ वैसा करें। पिताजी को जो हार्ट की बीमारी हुई है वो इसीलिए इनके हुई है कि वो है मिलिट्री के ऑफिसर, वो सब कुछ एक्यूरेट देखना चाहते हैं, और बच्चे आजकल के ऐसे हैं जो नाक में दम कर देते हैं। 12 बजे तक, 1 बजे तक टीवी देखेंगे और सुबह 9 बजे 10 बजे 11 बजे उठेंगे और हमको देख देख करके बहुत खुंदक होती है, हार्ट में दर्द होने लगता है, ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है। बहुत कुछ बात कहने के बाद जब नहीं समझ में उसको आया, मैंने कहा हर एक का पार्ट है। बोली पार्ट तो है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन चिंतन को रोक पाना परिवार के अंदर, गृहस्थी के अंदर, हम बच्चे हैं हमारे और बिगड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं आंखों से, कुछ नहीं हम करेंगे। हमने एक दो मिसाल भी बताए, हमने कहा बाबा हमारा क्या करता है, बाबा कहता है बच्चे मैं किसी को दुख भी नहीं देता हूँ, सुख भी नहीं देता, अपने को क्या किनारा कर लेता है, क्या कहता है मैं सुख का रास्ता बताता हूँ, बच्चे इस रास्ते पर चलोगे तो सुखी होगे और इस रास्ते पर जाओगे तो दुखी होगे। बाबा यही करता है ना, प्रैक्टिकल ये कर रहा है ना, किसी को पकड़ करके किसी पर दुआ कर दे, दया कर दे, बाबा नहीं करता है। बहुत रहम दिल है बाबा हमारा, बहुत प्यार है हमसे, लेकिन कर्मों की गहन गति समझाता है, रास्ता दिखाता है, करोगे तो पाओगे और नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। हम सब भी लौकिक प्रवृत्तियों के अंदर फर्ज ये है कि हम उनको सही मार्ग दिखाएं, प्रेरणा दें, और सबसे अच्छी बात है ज्ञान देने की बजाय अपने श्रेष्ठ जीवन से उन्हें प्रेरणा दी जाए। अगर हम गुस्सा करेंगे कहेंगे बड़ा आया ज्ञानी, हमको ज्ञान देता है और खुद गुस्सा करता है, कोई पर उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। हम शीतल हैं, हम शांत हैं, हम एक्यूरेट रहते हैं तो बच्चे अपने आप सीखते हैं, परिवार वाले अपने आप सीखते हैं, और अगर कुछ भी नहीं हमारा यंत्र चल रहा है तो कम से कम अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग तो करो। मैंने उसको कहा तुम 21 दिन तक कहना मेरा अगर मानती हो, पूछ रही हो, तो मैं एक आपको विधि बताता हूं, आप 21 दिन के लिए जैसे व्रत रखते हो, भूख का प्यास का खाना नहीं खाना ये व्रत नहीं, लेकिन 21 दिन के लिए उस आत्मा के प्रति शुभ चिंतन का व्रत ले, बोलना नहीं मुख से, कहना नहीं मैं तुमको सुधारना चाहती हूँ इसलिए कर रही हूं, कहोगी तो और बिगड़ जाएगा, लेकिन कम से कम आधा घंटा 15 मिनट उस आत्मा को समय निश्चित करके अपने शुभ संकल्पों का प्रयोग करके, यही प्रयोग हम बच्चों को बाबा सिखाता है। बच्चे अपनी शुभ संकल्प की शक्ति से, अच्छे वाइब्रेशन से, एकाग्र संकल्पों का उस आत्मा को दान दो, सहयोग दो, बदल जाएगी। समय लगता है इस पद्धति में, ऐसा नहीं है तुरंत मिल जाएगा फल, समय लग सकता है, लेकिन एक न एक दिन आपका व्यवहार, आपका श्रेष्ठ चिंतन, आपकी शुभ भावनाएं उस आत्मा को महसूस कराएंगी और वो आपका सहयोगी बन जाएगी। किसी भी कार्य में आप अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे अच्छा साधन और कोई भी नहीं। इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर आपके कार्य में कहीं पर भी रुकावट आ रही हो, कुछ समय अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ जाओ, संकल्प की शक्ति को जमा कर लो, व्यर्थ बोल को स्टॉप कर दो। बोलना नहीं है, बोलने से काम बिगड़ते हैं, बनते नहीं है। जितना कम बोलो उतना अच्छा है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का प्रयोग करके, अगर हमारा कोई ऐसा संस्कार है, मान लो हमारे अंदर अभी तक बाबा कहता है काम का संस्कार नहीं जीता है, बार बार कर्म इंद्रियों में चंचलता आती है, बार बार क्रोध की अग्नि अंदर अंदर जलती, भले हम ऊपर से नहीं बोलते हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, ये सब क्रोध के चिन्ह हैं। ये अंदर के संस्कार अगर रहे हुए हैं, इस बीज को अगर जलाया नहीं है, कोई भी बीज अगर जलाया न जाए, तो जब उसको अच्छा खाद और पानी का संग मिलेगा वो अंकुरित हो जाएगा। अगर इन संस्कारों के बीज को मैंने योग की अग्नि के अंदर जलाया नहीं है तो किसी समय भी अंकुरित हो सकता है। कभी भी क्रोध आ सकता है, कभी भी काम की आग लग सकती है। नहीं, काम की अग्नि अगर कर्म में आएगी तो वृत्तियों के अंदर आ जाएगी, मनसा को अशुद्ध बना देगी, हाथ पैर में चंचलता आ जाएगी, इंद्रियों में चंचलता आ जाएगी। ये बीज है और इस बीज को हम बिना तपस्या के समाप्त नहीं कर सकते। शुभ संकल्प की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति उस संस्कार को जड़ से समाप्त कर सकती है। तो आप सबको बहुत सुंदर गोल्डन चांस मिला है। हम बार बार आपको इशारा कर रहे हैं कि आप ऐसी तपस्या करो, अंतर्मुखी बन करके, एकांतवासी बन करके, मन और मुख का मौन धारण करके, बस बाबा से बातें करो, बहुत मीठी मीठी बातें करो, जो दिल में आए बाबा से बातें कर लो, और अगर बहुत प्यार उमड़ता हो तो प्रेम पत्र लिख दो, बैठ जाओ प्यार से, लिख डालो उसको, बाबा को लिख दो पत्र, और प्यार में समाये रहो, खोए रहो, देखो परिवर्तन कैसे होता है, संस्कार कैसे चेंज हो जाते हैं। ये भट्टी विघ्न विनाशक भट्टी बन जाएगी, किसी भी प्रकार का विघ्न, क्योंकि विघ्न बहुत आने वाले हैं, समस्याओं के तो पहाड़ हैं दुनिया के अंदर, उन सब विघ्नों पर हमारी विजय हो जाए, प्रकृति पर हमारी विजय हो जाए, इंद्रियों पर हमारी विजय हो जाए, इसका नाम है भट्टी। और इसकी विधि है सिर्फ मन और मुख का मौन, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो आप सभी ऐसी तपस्या करो, ऐसी लगन में मग्न होकर के अभ्यास करो, बहुत आनंद, बहुत मौज। सुखा योग नहीं है, सुखा सुखा नहीं करना, ऐसे नहीं चेहरा मुरझा जाए। कई लोग शांत रहते हैं, जब गंभीर होते हैं तो चेहरे की रौनक उड़ जाती है। चेहरे की रौनक नहीं जानी चाहिए, चेहरे पर रौनक रहे और अंदर से दिखाई दे कि आत्मा किसी से मिल रही है, किसी से बात कर रही है, प्रेम के सागर से, सुख के सागर से, आनंद के सागर से जिसकी वार्तालाप चल रही हो, उसका चेहरा मुरझाएगा कैसे। अगर अंदर ही अंदर बाबा से बात कर रहे हो, प्यार में डूबे हुए हो, चेहरे पर भी वो रमणीकता होगी, मधुरता होगी, वो मुस्कुराहट होगी, प्राप्ति संपन्न चेहरा होगा, न कि मुरझाया सूखा हुआ। बहुत खुशी और आनंद में आत्मा प्रफुल्लित होती रहेगी, गदगद होती रहेगी, जिसको बाबा कहते हैं ना, खुशी में खगियां मारेगी, अंदर से आत्मा बिल्कुल ऐसे लगेगा बस भगवान से मैं मिल रही हूँ। तो आप सभी भगवान से बातें करो, भगवान के प्यार में समाये रहो और उसी से सब शक्तियां ग्रहण करते रहो अंतर्मुखी बनकर के। ओम शांति।
मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। तुम बहार हो।